Namaskar and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor Nikhil Kumar.
नमस्कार मार्केट मंत्र के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है. आधे घंटे के इस कार्यक्रम में हम हमेशा की तरह देश और दुनिया से चुनी हुई आर्थिक कारोबारी और शेयर बाजार से जुड़ी हुई खबरें लेकर आपके लिए हाजिर हैं. हमारे साथ खबरों पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ ए के भट्टाचार्य जी. ए के, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है.
नमस्कार, धन्यवाद.
और सबसे पहले अंग्रेजी में हेडलाइंस के साथ में लालिमा.
Thank you, Nikhil. Yes, friends, the headlines first. Benchmark indices end lower for fourth session. Sensex drops 455 points. Nifty closes below 22,000. Oil prices extend losses on easing West Asia tensions, demand concerns. And Infosys profit jumps 30% to 7,969 crore rupees in March quarter.
घरेलू शेयर बाजार लगातार चौथे सत्र में नुकसान के साथ बंद हुए. सेंसेक्स में 455 अंक की गिरावट. निफ्टी 22,000 के स्तर से नीचे पहुंचा. पश्चिम एशिया में तनाव और मांग की चिंताओं के बावजूद तेल की कीमतों में गिरावट. और इन्फोसिस ने मार्च तिमाही में 30% लगभग 7,969 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया. स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम में. सबसे पहले शेयर बाजार से जुड़ी खबर. भारी उतार चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार आज लगातार चौथे सत्र में नुकसान के साथ बंद हुए. पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक अस्थिरता, बॉन्ड यील्ड में उछाल और कॉरपोरेट कमाई के सत्र के बीच निवेशकों द्वारा मुनाफा वसूली करने से ये गिरावट देखी गई. ब्याज दर में कटौती की उम्मीदें कमजोर पड़ने तथा विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा लगातार बिकवाली की चिंताओं के कारण निवेशकों की धारणाओं पर नकारात्मक असर देखने को मिला. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 455 अंक यानी कि 0.62% के नुकसान के साथ 72,489 अंक पर आकर बंद हुआ. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 152 अंक यानी कि 0.69% की गिरावट के साथ 21,996 अंक पर आ गया. विस्तारित बाजार की हम बात करें तो बीएसई मिड कैप सूचकांक में 0.40% की सुस्ती आई और स्मॉल कैप सूचकांक मामूली बढ़त दर्ज करता हुआ 0.06% के लाभ के साथ बंद हुआ.
बेंचमार्क इक्विटी इंडिसेस इरेज्ड इनिशियल गेन्स एंड एंडेड लोअर फॉर द फोर्थ स्ट्रेट सेशन टुडे एज इन्वेस्टर्स बुक प्रॉफिट्स अमिड जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इन वेस्ट एशिया, एलिवेटेड बॉन्ड यील्ड्स एंड कॉर्पोरेट अर्निंग्स सीजन. Concerns over fading rate cut hopes and persisting FII fund exodus from domestic equities also dampened investors' sentiment. The BSE Sensex plunged 455 points or 0.62% to close at 72,489, while Nifty 50 declined 152 points or 0.69% to settle at 21,996. From the Sensex basket, Nestle India, Titan, Axis Bank, NTPC and Tata Motors were the major laggards. On the other hand, Bharti Airtel, Power Grid, Infosys and Larsen & Toubro were among the gainers. In the broader market at the BSE, mid-cap sector fell 0.40%, while the small-cap sector ended in the green with a marginal gain of 0.06%. In sectoral indices at the BSE, consumer durable sector declined 1.52%, energy index fell 1.30% and healthcare sector slipped 1.23%. In contrast, telecommunication index rose 1.62% and tech sector gained 0.70%. So, Mr. Bhattacharya, how do you see the Sensex touched 75,000 one point of time? We were all elated. Is this more practical or should we say a corrected form of the markets when we are at 72,489? And what is the reason for a dampened investor sentiment?
There are both global as well as domestic factors at play.
Mm-hmm.
I would not say that what happened in the markets today is an indication of what may be in store for the markets in the next 6 or 8 or 9 months or even 1 year. As a matter of fact, there are clear assessment on the markets overall outlook that while the last financial year saw the broad indices, benchmark indices growing by around 23 to 26%, and the current year will see a rise of 11%. So there is a deceleration in growth that is already built into the outlook. Now remember that the year before, which means in year 22-23, the stock markets rose by only 5 to 6%. So 5 plus 6%, 26%, mm-hmm. and now settling at 11%. This is the forecast. Mm-hmm. Now I think today's market developments broadly indicate that trajectory. But what actually happened today, there are three important factors that must be kept in mind.
Uh-huh.
One is, of course, the building geopolitical tensions that you also referred to. What is happening in West Asia is something that causes tremors in the market, because India, after all, is dependent on oil to the tune of 88% of its imports, of its meat needs are met through imports.
Mm-hmm.
And right now, if geopolitical tensions rise, India's oil imports, the path, the journey that it takes comes from the Strait of Hormuz and the Red Sea. Now, if the avenues, the transportation avenues are blocked, and India does not have a pipeline source like China has. So therefore, the oil scenario gets a little clouded, and India, as I said, is dependent hugely on imported oil and gas. So therefore, that is also impacting the stock market. And number two is the Fed, the US Fed, is clearly indicating that the time for a rate cut is not now. Nobody is actually expecting the rates, the US Fed rates, to be brought down before October, because they want to bring down the inflation down to 2% before anything else happens. So that is also going to impacting the domestic markets here, because if interest rates stay elevated, money will not come into this market that easily. So therefore, that is a second factor. And the third factor is the corporate earnings outlook, where many of the sectors are not really expecting the corporate earnings to do better, which is the last quarter of this last financial year, which the results are coming in now. So all told, you are seeing a slightly bearish sentiment in the capital market, but I don't think that this is the totality story of the Indian stock markets. There are segmented, there are nuanced development that are happening, which we can discuss later.
Right.
देखिए, अभी अगर शेयर मार्केट पे हम नजर डालें तो एक पीक पर पहुंचा, पीक के बाद लगातार 4 सत्रों में गिरावट आई, और थोड़ा सा अगर पीछे जाकर हम देखते हैं तो एक ये टेंडेंसी सी है इसकी कि थोड़ा सा आगे बढ़ना फिर वापस लौट के आना, थोड़ा सा आगे बढ़ना फिर वापस लौट करके आना। लेकिन जो हमारे निवेशक हैं कहीं ना कहीं वो इस चीज से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं जो बाहर का असर पड़ रहा है मार्केट पर। लेकिन इसके बाद भी इंडियन मार्केट में कुछ सेक्टर, जैसे हम आईटी सेक्टर की बात करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जो भी हमारे मार्केट हैं या सेक्टर हैं, उनमें इस तरह का बदलाव खासतौर पर हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये भारत के मार्केट की मजबूती है या जो विदेशी निवेशक हैं उनका ऐसा मानना है कि इन सेक्टर से पैसा निकालना ठीक नहीं है, इनका पैसा इन्वेस्टेड ही रहना चाहिए?
आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं समझता हूं कि ये सेक्टर की स्टोरी है
जी।
इंडियन स्टॉक मार्केट अब सेक्टर स्पेसिफिक बन चुकी है।
बिल्कुल।
और अगर आप इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखेंगे, पिछले साल उन्होंने अच्छा नहीं किया, और इस साल पूरी तरह से, और इंफोसिस के रिजल्ट की ओर देखेंगे या टीसीएस के रिजल्ट को देखेंगे, आपको क्लियर इंडिकेशन आएगा कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर इस साल लास्ट ईयर के तुलना में ज्यादा अच्छा करेगा। एफएमसीजी सेक्टर का भी जो आउटलुक जो है वो बहुत ही, कॉर्पोरेट अर्निंग्स का जो आउटलुक है वो बढ़िया है। बैंकिंग, बीएफएसआई, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस सेक्टर जो है, ये भी एक ऐसा सेक्टर है। सो अगर आप ये तीन सेक्टर को देखेंगे, उसमें अगर जो खुदरा निवेशक जो है वो अगर इन सेक्टर में ज्यादा ध्यान दे, मैं समझता हूं उनमें ग्रोथ की, उनकी अर्निंग्स ग्रोथ की जो स्कोप जो है वो उनको ज्यादा मिलेगा, हालांकि अगर वो इंडेक्स को और सिर्फ देखें।
इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, बिजली क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो देश में लगातार बिजली की मांग बढ़ रही है और साथ में उत्पादन भी बढ़ रहा है, तो ये भी एक डेवलपमेंटल स्टोरी हमारे लिए हो सकती है कि विकास हो रहा है तो बिजली की मांग है और बिजली की मांग को पूरा करने के लिए अन्य चीजें भी है, जैसे कि कोयले के उत्पादन पर हम आते हैं, तो कई सारे सेक्टर्स इनसे जुड़े हुए जो प्रॉफिट में रह रहे हैं अगर हम थोड़ा सा पीछे से जाकर।
जरूर, आपने एकदम सही कहा कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर ऐसा सेक्टर है जहां पर डिमांड बढ़ रहा है। जब इकोनॉमी की ग्रोथ अगर 7.5% की एस्टिमेट कर रहे हैं इस साल, तो जरूर इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी, कोल की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि अभी भी हमारा कोल प्रधान ऊर्जा का स्रोत है। तो पर इसके साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा किस तरह से हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर का रिफॉर्म हो, क्योंकि हालांकि डिमांड बढ़ रहा है पर जो पेमेंट की जो मैकेनिज्म जो है वो अभी भी उतनी सुदृढ़ और सरल नहीं हुई है। तो कंपनियां जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में हैं और जो कोल सेक्टर में है, उनकी जो अर्निंग्स जो एक ट्रेजेक्टरी है वो अभी भी साफ नहीं है। इसीलिए हालांकि डिमांड अच्छा है पर उनकी जो अर्निंग्स की ग्रोथ जो है, उसका जो आउटलुक जो है उतना ज्यादा अच्छा नहीं दिख रहा है। इसीलिए मैं समझता हूं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को छोड़ दीजिए, बाकी सेक्टर में हमारी आउटलुक अच्छी है, ब्राइट है। रोड सेक्टर कहिए या एयरपोर्ट सेक्टर देखिए, पर इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन एंड की जो रिफॉर्म, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं, जो कंज्यूमर एंड को देते हैं, वहां पे किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर में जो इतनी बड़ी जो सब्सिडी जाती है उसके लिए जो क्रॉस सब्सिडाइजेशन करना पड़ता है, उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में थोड़ा बहुत जो एक प्रेशर आ रहा है, उसी के लिए इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर को डिमांड ज्यादा होते हुए भी मैं ज्यादा स्कोप देने के लिए मैं नहीं कहूंगा।
यू वेरी नाइसली एक्सप्लेन अबाउट वेरियस सेक्टर्स मिस्टर भट्टाचार्य, टॉकिंग अबाउट आईटी एंड अदर सेक्टर्स। व्हाट अबाउट द हेल्थ केयर सेक्टर? आवर रिपोर्ट सेज हेल्थ केयर सेक्टर स्लिप्ड 1.23%, कॉज फॉर वरी बिकॉज ड्यूरिंग कोविड दिस वॉज वन सेक्टर विच हैड गॉन अप बिकॉज वी वर मैन्युफैक्चरिंग पीपीईज एंड इवन एक्सपोर्टिंग, सो वेयर डू यू सी दिस गोइंग?
वेल, आई थिंक द फंडामेंटल्स ऑफ द हेल्थ केयर सेक्टर आर स्टिल वेरी स्ट्रांग। व्हाट प्रोबेबली इज हैपनिंग is that the demand side is strong, but the supply side is not been able to meet up to those expectations. When I say supply side, I mean the kind of capacity building, the kind of the payment mechanisms on the healthcare givers. Mm-hmm. They are not yet clear. They are still very much insurance driven, and it is important that the healthcare system must move on both the legs. One is being moved by the insurance sector, the other is by creating capacity in the healthcare sector. And the sense is that in the last 5 years, we have built a strong insurance-backed healthcare sector, but along with that, the healthcare delivery system on its own, which provides reasonable healthcare services to people, at very competitive prices, the competition. So that sector is yet to be vibrant. So I think what you are seeing today and the last few days on the healthcare sector is a reflection of weaknesses in the healthcare delivery system, which is not a problematic challenge. It can be overcome once there are more investments coming in. Both healthcare and education are somewhat similar, and I would say that it is not a sector that causes concern, but certainly it requires a lot of attention if you want to reap the full benefits of this sector's growth.
एक है हमारे देश में बहुत सारे छोटे छोटे निवेशक हैं, हल्की सी अप्रोच लेकर के चलते हैं। तो अगर आज के माहौल को हम देखें, आज के मार्केट को देखें और आने वाले एक दो महीने जो हैं वो मार्केट मतलब इस तरह का रहेगा, शायद उसमें ज्यादा बदलाव हो जाए, तो कैसी अप्रोच लेकर के उन्हें चलना चाहिए जो हमारे छोटे निवेशक हैं?
देखिए, ये जो साल जो है इस वक्त हम एक इलेक्शन के सीजन से गुजर रहे हैं।
वही आपसे पूछना
चाहिए, इलेक्शन के सीजन में गुजर रहे हैं इस वक्त। मैं समझता हूं डोमेस्टिक सेक्टर के डेवलपमेंट जो है वो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स उतना इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं करेगा। हाँ, एक बहुत बड़ा एक डेवलपमेंट जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे वो जरूर स्टॉक मार्केट को इन्फ्लुएंस करेगा। मैं इस वक्त जो छोटे निवेश जो हैं उनके लिए मैं यही सलाह दे सकता हूं कि वो अपना जरा संभल के ये समय को अतिवाहित करें और अपने पोजीशंस को अपना बरकरार रखें, क्योंकि जो फंडामेंटल्स हैं मार्केट के अभी भी स्ट्रांग है, इकोनॉमी की जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो अभी भी अच्छी है, डिमांड है इकोनॉमी में, इन्वेस्टमेंट अगर आप अगर रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो को देखेंगे उसमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर पूरी तरह से जोर लगाया गया है। 13 ऐसे सेक्टर हैं जहां पे पूरी इन्वेस्टमेंट की जोर लगाया गया है। वहां पे काफी सारे जो 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 थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस उसमें रिफॉर्म की बात की गई है, जुडिशियल सेक्टर रिफॉर्म की बात की गई है। तो अगर रिफॉर्म्स की बात करेंगे तो रूलिंग पार्टी के मैनिफेस्टो से लगता है कि फैक्टर मार्केट रिफॉर्म को छोड़कर बाकी सेक्टर में जुडिशियल रिफॉर्म या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म या स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन की रिफॉर्म, इसमें सारे में जोर दिया गया है। तो मुझे लगता है कि छोटे निवेशकों को इस वक्त वेट करना चाहिए, जहां पे वो हैं वो अपनी पोजीशन को बनाए रखें और 4 जून के बाद अपना एक दूसरा कदम ले।
यू टॉक्ड अबाउट 4th जून अगेन एंड अगेन, इट्स कमिंग इन अ कन्वर्सेशन। वन थिंग इज श्योर, आई मीन मार्केट्स आर फ्रजाइल, इट्स द नेचर ऑफ द मार्केट टू बी फ्रजाइल, बट वन थिंग इज श्योर निखिल एंड मिस्टर भट्टाचार्य, दैट मार्केट्स लाइक स्टेबिलिटी।
एब्सोल्युटली।
सो वी वेट फॉर द 4th जून रिजल्ट्स एंड देन सी विच वे द मार्केट्स गो।
इस बीच आपने जो बात की इन्वेस्टमेंट वाली, अभी मैं हाल की खबरों पे अगर थोड़ा सा जोर डालूं तो पता चलता है कि अभी हाल में ही काफी निवेश के बारे में लोगों ने बात की, विदेश से काफी निवेश की बातें हो रही हैं और उम्मीद है कि आने वाले इस मतलब जो अब पूरा साल जो हम कंप्लीट करेंगे पूरे साल में अच्छा खासा निवेश आएगा।
जो विदेश के निवेश जो है ये सरकार के थोड़े बहुत नीति को ऊपर निर्भर करता है और डोमेस्टिक डिमांड कैसी है उसके ऊपर भी निर्भर करता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो हमारी जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को क्लियरेंस करने की जो प्रणाली है उस प्रणाली में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया था 3-4 साल पहले, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स आ रही हैं पर वो प्रपोजल्स डिफरेंट जो विभिन्न जो मिनिस्ट्री जो हैं मंत्रालय में वो उनकी डिमांड पड़ी हुई है। तो पहले क्या होता था, पहले एक साथ मिलाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड को देखा जाता था, पर इस वक्त कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड नहीं है, तो उसके लिए डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में ये प्रपोजल्स आ रही हैं। मेरा मानना यह है कि जो एक ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फ्लोज है वो थोड़ी बहुत कमी हुई है, इंडिया में भी कमी हुई है, पर इससे ये एक शॉर्ट टर्म ट्रेंड है। जिस तरह से फॉरेन इन्वेस्टमेंट की जो नॉर्म्स जो हैं, जैसे स्पेस सेक्टर में अभी रिलैक्सेशन दिया गया है, मुझे मैं कॉन्फिडेंट हूं कि इन्वेस्टमेंट की जो गति जो है वो बरकरार रहेगी।
वी ऑफन टॉक अबाउट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, व्हाट अबाउट डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट? यू थिंक वी हैव बीन लिटिल स्लो ऑन दैट फ्रंट, स्पेशली बिकॉज मेनी ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स विच द गवर्नमेंट इज अंडरटेकिंग नाउ इज वेरी मच, दे आर वेरी मच इन द पीपीपी मोड, दैट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड। सो डू यू थिंक दैट वी नीड टू perk up our domestic infrastructure? We don't talk domestic investment. We don't talk much about that. We're always talking about foreign investment. Is it the dollar? Is it the dollar?
No, it's a very important point you have raised. Let me say this, that post-COVID years, we have seen the government taking the lead, playing the lead role in attracting investments, in a sense the government itself is doing this investment in various infrastructure sectors, and you know, I mean, starting from 4 lakh crore in 3 years ago, it went up to 7 lakh crore, and last year it was 10 lakh crore, and now next year the interim budget talked about 11.5 lakh crore. And what is interesting is that along with that, the states are also being drawn into it through a reform linked investment program. So we are seeing the government taking the lead role in encouraging investment into capital sector building. Now, the worry point here is that the private sector is yet to come in as well as it should have. Now, there are early signs, if you look at the latest RBI report, that there are early signs of private sector also getting attracted towards the investment cycle. And my sense is that the private sector will come into the investment cycle in a bigger way if the consumption side of the economy picks up, and that is something that we are still waiting to see whether the consumption picks up or not, or maybe the full budget to be presented in July will have something in it by which it gives incentive for more consumption through some incentives, and therefore you will see that more consumption Therefore, the private sector is encouraged to come in with more investment and create a virtuous cycle of more investment, more consumption, and ever more growth.
Right.
और अब रुपए पे नजर डालें तो विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमरीकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.54 रूपये के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की छह प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 105.89 पर कारोबार कर रहा था। और एशिया यूरोपीय बाजार की बात करें तो एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में आज बढ़त का रुख रहा। दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 1.90% की तेजी आई। सिंगापुर के स्ट्रीट्स टाइम इंडेक्स में 1% का उछाल आया। हांगकांग शेयर बाजार का हैंगसेंग इंडेक्स 0.80% ऊपर आ गया। जापान का निक्केई सूचकांक और चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक भी हरे निशान के साथ बंद हुए। यूरोप के सभी प्रमुख शेयर बाजार लाभ के साथ कारोबार कर रहे थे। फ्रांस के कैक में 0.43% का उछाल आया। लंदन के फुटसी में 0.24% की तेजी आई। और अंतिम समाचार मिलने तक जर्मनी के डेक्स 0.07% की बढ़त में था। एक तरफ भारतीय बाजार डाउन हुआ, वहीं दूसरी तरफ एशियाई और यूरोपीय बाजार बढ़त में रहे, ऐसा क्यों?
देखिए ये तो दिन दिन की बात है
जी।
इस वक्त जो एशियाई मार्केट जो हैं, यूरोपियन मार्केट जो हैं, वो काफी दिन से नीचे जा रही थी
जी।
अब उनकी रिकवरी मोड में है, थोड़ा बहुत है। और मैं ये समझता हूं कि जो चीज अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट का जो रवैया चल रहा है, वो रवैया थोड़ा डिफरेंशिएटेड लेवल से हो रहा है। जैसे कि जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक है, उसमें उनकी जो यूरोपियन सेंट्रल बैंक की गवर्नर साहिबा हैं, उन्होंने ऐसा इंडिकेशन दिया है कि उनकी जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग जो रिजीम जो है वो इतनी स्ट्रिक्ट नहीं बनेगी। इसका मतलब इंटरेस्ट रेट घटने की आशा दिख रही है वहां पे। सो जब इंटरेस्ट रेट घटने की आशा दिखती है तो स्टॉक मार्केट में जब थोड़ा बहुत चढ़ाव आता है तो वही चीज हम वही देख रहे हैं। और यूके में भी इकोनॉमिक ग्रोथ की एक रिकवरी आई है, लेटेस्ट नंबर्स, फर्स्ट टाइम यूके का एक पॉजिटिव ग्रोथ दिख रहा है। तो ऑन द होल यूरोप एंड एशिया में एक रिकवरी का आवास मिल रहा है। मैं समझता हूं कि इंडिया का स्टॉक मार्केट उससे बहुत डिफरेंट ट्रैजेक्टरी नहीं है। ये आज की तारीख में 75,000 चढ़ने के बाद थोड़ा बहुत स्टेबिलाइज कर रहा है। बहुत ही एक्सपेंसिव मार्केट हो गया था
जी,
तो अभी स्टेबिलाइज कर रहे हैं वो 72,000 के ऊपर। तो अब हम देखना पड़ेगा किस तरह से वो डेवलपमेंट आगे और चले।
राइट,
व्हेन वी लुक एट द एशियन मार्केट्स वी कांट इग्नोर चाइना, एंड चाइना सीम्स टू बी द इकोनॉमी सीम्स टू बी स्लोइंग डाउन, स्पेशली द रियल्टी सेक्टर। हाउ वुड यू कंपेयर चाइना विद द रेस्ट?
नो, द चाइनीज, इफ यू लुक एट द लेटेस्ट असेसमेंट फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, द चाइनीज नंबर्स फॉर द फर्स्ट क्वार्टर वॉज क्वाइट सरप्राइज। द ग्रोथ रेट वॉज 5.1 एंड I think the Chinese economists and the Chinese government, they try to influence the IMF in making sure that their growth outlook should be revised upwards. But the interesting point is the IMF did not improve the outlook for China, even though they improved the outlook for India and other countries in Asia. Now why? Mm-hmm. Because the IMF believes that the Chinese growth potential or Chinese growth impulses are not that strong to take that Chinese economy further in the higher growth path. So it still retains at 4.6% growth, whereas India's is above 7%.
Right. All right, let's take a look at the U.S. markets. U.S. stocks fell in choppy trading yesterday as investors assessed the Federal Reserve's interest rate stance and a batch of soft earnings early in the financial reporting season. The Nasdaq Composite slipped 1.15% and the S&P 500 lost 0.58%, and the Dow Jones Industrial Average fell 0.12%. U.S. Markets have generally recovered post-COVID and doing well, and a little bit here and there is all right.
Well, I think this is a very small, it is in tune with the overall trend that the Fed is not going to relax on interest cuts, and therefore the markets will remain choppy as always. But the good news is that in this manner of Fed's approach to interest rate policy and interest inflation management, you are making sure that if there is any the economy sort of coming down to its normal level of output, there will be no major disruptions or shocks. So this is, I would say, it contributes to an overall stability in the U.S. markets.
सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की अनुमति देने के अपने फैसले को लागू करने के लिए विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत संशोधित नियमों को अधिसूचित कर दिया है। वित्त मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार उपग्रहों, उपग्रह डेटा उत्पादों और ग्राउंड सेगमेंट तथा उपयोगकर्ता सेगमेंट के विनिर्माण और संचालन के लिए शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि 74% निवेश के लिए सरकार की मंजूरी की जरूरत नहीं होगी और इससे अधिक के निवेश के लिए सरकार की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी। वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि प्रक्षेपण यान और उससे संबंधित प्रणालियों या फिर उप प्रणालियों में 49% तक के निवेश के लिए भी सरकार की अनुमति जरूरी नहीं होगी। इससे अधिक के निवेश के लिए सरकार की इजाजत लेनी होगी। मंत्रालय ने यह भी कहा है कि उपग्रहों, ग्राउंड सेगमेंट और उपयोगकर्ता सेगमेंट के लिए घटकों, प्रणालियों और उप प्रणालियों के विनिर्माण में शत प्रतिशत निवेश सरकार की अनुमति के बिना किया जा सकता है। नए नियम 16 अप्रैल से लागू हो गए। एके, इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं?
देखिए, हमें यह समझना होगा कि जो प्रयुक्ति या टेक्नोलॉजी और निवेश, इसका एक बहुत, दोनों का बहुत गहरा संबंध है। हमने देखा है कि जो हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर्स होते हैं उसमें ज्यादातर जो विदेशी कंपनियां जो हैं वो अपना निवेश नहीं करना चाहती हैं, क्योंकि वो समझती हैं कि वो टेक्नोलॉजी वो लाएंगे तो उनमें एक इन्वेस्टमेंट का स्टेक हो
जी।
तो वो टेक्नोलॉजी तभी लाते हैं जब उनका एक इन्वेस्टमेंट स्टेक हो और वो मेजोरिटी स्टेक हो।
राइट।
तो इसीलिए मैं समझता हूं कि सरकार ने ये एक इंसेंटिव दिया है कि 74%, इसका मतलब ऑलमोस्ट कंप्लीट कंट्रोल फॉरेन इन्वेस्टर्स का होगा और ये ऑटोमेटिक रूट से जाएगा। और इसका मतलब ये है कि इंडिया का एक ग्लोबल स्पेस हब बनने का एक जो एक एम्बिशन जो है, जो एक सपना जो था, वो उसके तरफ हम बढ़ रहे हैं। इंडिया का जो इसरो का जो अपना ही जो प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव से जो अभी तक काम किए हैं वो सराहनीय हैं, पर इससे हम ये देखेंगे कि एक इसरो और प्राइवेट सेक्टर जो इसरो के साथ आई हैं और जिन्होंने सप्लाई इतने कर रहे हैं उनके साथ फॉरेन कंपनीज की एक अच्छी एक कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा वाली एक जो वातावरण जो पैदा होगा, मैं समझता हूं कि एफिशिएंसी और ग्रोथ के लिए बहुत बड़ा एक फल मिलेगा हमें।
राइट। आईटी मेजर इंफोसिस हैज इन्फॉर्म टुडे दैट इट्स कंसोलिडेटेड प्रॉफिट जंप 30% टू 7,969 करोड़ रुपीज इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2023-24। कंपनीज कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट वाज एट 6,128 करोड़ इन द सेम क्वार्टर लास्ट ईयर। इंफोसिस बोर्ड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 20 रुपीज पर इक्विटी शेयर फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 एंड एडिशनली अ स्पेशल डिविडेंड ऑफ 8 रुपीज पर इक्विटी शेयर। द कंपनी ऑल्सो अनाउंस्ड it will acquire 100% stake in German firm Intech in an all-cash deal for €450 million. And look at the oil prices now. Crude oil prices extended losses today after a 3% decline in the previous session as investors' attention shifted towards indications suggesting that a wider conflict in Key West Asia could be avoided. Additionally, oil prices eased due to demand concerns. The Brent crude oil futures was lower at $86.69, whereas Western Texas Intermediate was down at $82.19 when reports last came in. And important news. Food Safety and Standard Authority of India is examining the claim that Nestle added sugar to infant milk. Sources said the findings will be placed before the scientific panel, and the move came following a report of a Swiss investigative organization that claimed that the Swiss multinational company added sugar to its milk formula brand for infants and children of up to 2 years old.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के वायदा कारोबार के लिए सोना बढ़त के साथ कारोबार कर रहा था। इस कीमती धातु का मूल्य 95 रूपये यानी कि 0.13% की तेजी के साथ 72,618 रूपये प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मई अनुबंध के लिए चांदी करीब करीब सपाट रहते हुए 83,005 रूपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना दिन के कारोबार के दौरान 0.32% के उछाल के साथ $2,396 प्रति औंस के स्तर पर था। वहीं चांदी भी 0.40% की बढ़त से $28.52 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार कर रही थी।
गोल्ड सीम्स अनस्टॉपेबल। वेल, ऑन दैट नोट, थैंक यू मिस्टर भट्टाचार्य फॉर कमिंग टू आकाशवाणी स्टूडियोज। एंड फ्रेंड्स, बिफोर वी वाइंड अप, हियर इज अ रिमाइंडर ऑफ द हेडलाइन। points. Benchmark indices end lower for the fourth session. Sensex drops 455 points. Nifty closes below 22,000. Oil prices extend losses on easing West Asia tensions, demand concerns. And Infosys profit jumps 30% to 7,969 crore rupees in March quarter. That's all, friends, we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil, winding off. Namaskar.
Namaskar. Market Mantra.